यरमिया अध्याय 18, यरमिया अध्याय 18 पद 1 से लेकर 6 तक। यहोवा की ओर से ये वचन यरमिया के पास पहुंचा, उठकर कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इसराइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इसराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। यशया के समान परमेश्वर ने यरमिया को भी कुम्हार का उदाहरण दिखाया। परमेश्वर ये दर्शा रहा था कि मनुष्य के जीवन पर अंततः परमेश्वर की प्रभुता है। परमेश्वर जैसा चाहे वो मनुष्य के साथ कर सकता है। प्रेरित पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा था, रोमियो अध्याय 9 पद 20 और 21, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? प्रेरित पौलुस रोमियो की पुस्तक अध्याय 9, 10 और 11 में परमेश्वर के इस महान प्रभुत्व की चर्चा करता है और कुमार एवं मिट्टी की उपमा देता है। यरमिया से परमेश्वर कहता है, कुमार के पास जा और मैं तुझे वहां संदेश दूंगा। वो वहां जाकर देखता है कि कुमार चाक पर बर्तन बना रहा है। वहां तीन चीजें हैं, कुमार, चाक और मिट्टी। ये तीनों मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार को दर्शाती है। मिट्टी अपने आप में एक साधारण मूल्यहीन वस्तु है, परंतु कुमार की दक्षता के कारण वो एक बहुमूल्य और अति उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। कुमार के पास पूरा अधिकार है कि वो मिट्टी से जो चाहे बना दे। ऐसा ही हमारे जीवन पर परमेश्वर का असीम अधिकार है। चाक हमारे जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता है जिनके द्वारा परमेश्वर हमें रूप प्रदान करता है। जब यरमिया कुमार को देख रहा था, तब चाक पर बनने वाला बर्तन खराब हो गया। बनते बनते उसका रूप खराब हो गया। हो सकता है कि मिट्टी में कोई गांठ आ गई हो। वो बर्तन खराब हो गया। इस कारण कुमार ने फिर से मिट्टी को उठाकर रौंदा कि वो उसे जितना हो सके उतना अच्छा बर्तन बनाए। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या इसराइल राष्ट्र मेरे हाथ में मिट्टी नहीं? यद्यपि इसराइल खराब हो गया, परमेश्वर उसे फिर से बनाएगा और रूप देगा। वो उनमें एक नया काम करेगा। यद्यपि वो बर्तन खराब हो गया था, उसे त्यागा नहीं जा सकता था। परमेश्वर फिर से काम करके उन्हें अपनी इच्छा और प्रयोजन के अनुरूप तैयार करेगा। यरमिया अध्याय 18 पद 7, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा, वो ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब परमेश्वर ने अध्याय 1 में यरमिया को बुलाया था, तब उसने कहा था, मैंने तुझे जातियों का भविष्यत वक्ता ठहराया है। उसकी सेवकाई गिरा देने की, ढा देने की और नाश करने की थी। ये बड़ी विचित्र सेवकाई का बुलावा है। यरमिया, उखाड़ फेंक, उन्हें तोड़ दे, उन्हें नाश कर दे। एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि उसका पुनरुद्धार संभव नहीं होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं होती है। हालात हाथ से निकल चुके होते हैं, अतः नव निर्माण करने से पूर्व पहले का सब कुछ ढा देना पड़ता है। यही परमेश्वर कह रहा है कि उनकी दशा ऐसी बुरी है कि सब कुछ मिटाकर फिर से निर्माण करना होगा, सब कुछ शून्य करके नए सिरे से निर्माण करना होगा, सब ढा देना है, उखाड़ देना है और जो कुछ शेष है उसे समाप्त करना है। अतः वो यिर्मयाह को उसकी पहली बुलाहट की ओर ला रहा है। यिर्मयाह अध्याय 18 पद 9। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, पद 7 में वो कहता है उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा। यिर्मयाह अध्याय 18 पद 8 से लेकर 12 तक। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। परंतु वो यिर्मयाह की चेतावनी पर कान नहीं लगाते और कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। यिर्मयाह अध्याय 18 पद 13 और 14। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है। इसराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लेबनोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वो ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? लेबनोन के हिम से बहता हुआ निर्मल जल बहकर मैदानी क्षेत्र में आता है, जो परमेश्वर कहता है कि क्या ऐसा जल प्रवाह बंद हो सकता है? क्या कोई मनुष्य है जो ऐसे स्वच्छ और सुखदायी जल का त्याग करेगा? यिर्मयाह अध्याय 18 पद 15। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है, उन्होंने परमेश्वर को जो जीवन जल का सोता है त्याग दिया है, वे परमेश्वर यहोवा को भूलकर व्यर्थ के देवताओं को धूप जलाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 18 पद 15 से लेकर 18 तक। और पगडंडियों और बेहद मार्गों में भटक गए हैं, इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वो चकित होगा और सर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने से तितर बितर कर दूंगा, उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा, तब वे कहने लगे। यिर्मयाह ने जब उन्हें ये संदेश दिया तो उनकी प्रतिक्रिया थी, यिर्मयाह अध्याय 18 पद 18। चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दे। अतः यरमिया कहता है, यरमिया अध्याय 18 पद 19 और 20, हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए, और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। यरमिया कहता है, यहां मैं तो उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी मध्यस्थता कर रहा हूं, और वे मेरे नाश की युक्ति कर रहे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, देख मैं तो भलाई करता हूं और देख वे कैसे दुष्ट है। यरमिया अध्याय 18 पद 21, इसलिए उनके लड़के वालों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे, और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं, उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर अब मैं उनकी मध्यस्थता नहीं करूंगा, उन्हें दंड दे दे। यरमिया अध्याय 18 पद 22, उनके घरों में से चिल्लाहट सुनाई दे। ये एक शोकित व्यक्ति का चरित्र है। उनके शोक की चरम सीमा को हम अध्याय 20 में देखते हैं। यरमिया अध्याय 18 पद 23, हे यहोवा तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं, इस कारण तू उनके इस अधर्म को ना ढांप, ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए, अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। यरमिया उनसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। उसने सुना कि वे उसको मार डालना चाहते हैं, इस बार तो वो आपे से बाहर है। प्रभु उनसे ऐसा ही व्यवहार कर, जैसा तू चाहे वैसा कर, उनका नाश कर दे, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उसकी ये प्रार्थना मूसा से बिल्कुल ही अलग है। आपको ध्यान होगा कि मूसा ने इसराइलियों के लिए प्रार्थना की थी, हे प्रभु उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपनी स्मरण पुस्तिका से मिटा दे, मुझे अपनी तुलना मूसा के साथ करने में मुझे बड़ी ही कठिनाई महसूस होती है, लेकिन यरमिया के साथ तुलना करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है। मैं जब अपनी कार के पास आकर देखता हूं कि किसी ने मेरी कार को खरोच डाला है, तो मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन्हें घेर ले और उन्हें मार डाल, उनकी टांग तोड़ दे, प्रभु उन्हें दंड दे। मुझे ऐसे लोगों पर दया नहीं आती जो नुकसान करते हैं। ऐसी बातें देखकर मुझे गुस्सा आता है। प्रभु अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उन्हें दंड दे। इस प्रकार मेरा स्वभाव मूसा की अपेक्षा यरमिया से मिलता जुलता है।